ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि श्लोक संख्या 29 पृष्ठ संख्या 534। मेरे पीछे बोलिए। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतास्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानं मशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतास्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानं मशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतास्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानं मशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। शब्दार्थ बोलिए। बुद्धे है बुद्धि का भेदम अंतर, धृते है धैर्य का, च भी एवं निश्चय ही, गुणतः गुणों के द्वारा, त्रिविधम तीन प्रकार के, श्रृणु सुनो, रोच्यमानम जैसा मेरे द्वारा कहा गया, अशेषेण विस्तार से, पृथक्त्वेन भिन्न प्रकार से, धनंजय हे संपत्ति के विजेता। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। तुम्हें धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सागण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपति गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते तत्य कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष सुनवादी पाशात देश तारिणी।
ये श्लोक फिर से निकाली, ये श्लोक समझेंगे। भगवान कह रहे हैं बुद्धेर भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम सुनु। बुद्धि के तीन प्रकार के भेद और धृति के तीन प्रकार के भेद, गुणता यानी गुणों के अनुसार श्रवण करो। कौन से गुण? सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो सत्वगुण में कैसी बुद्धि होती है, रजोगुण में कैसी बुद्धि होती है, तमोगुण में कैसी बुद्धि होती है, तीन प्रकार से श्रवण करो। और धृति यानी संकल्प शक्ति जो है बुद्धि में, जो संकल्प शक्ति या धैर्य की शक्ति होती है विचारों को धारण करने की, स्थिर करने की जो शक्ति है, तो वो भी तीन प्रकार की है, सात्विक राजस और तामस। तो भगवान कह रहे हैं कि इसको श्रवण करो। प्रोच्यमानम अशेषण, अशेषण का मतलब पूरी तरह से जो कहा गया है, पृथक क्यों धनंजय, अलग अलग कहा गया है ना। तो हर श्लोक में एक प्रकार से बताया जाएगा। अगले जो श्लोक हैं, तो अगले छह श्लोकों में भगवान जो है छह अलग अलग बताएंगे। तीन श्लोकों में तीन प्रकार की बुद्धि और फिर तीन श्लोकों में तीन प्रकार की धृति। श्लोक संख्या 30 में भगवान तीन प्रकार की बुद्धि बतलाते हैं, नहीं सत्वगुण की बुद्धि बताते हैं, और 31 में रजोगुणी बुद्धि, 32 में तमोगुण बुद्धि। फिर श्लोक संख्या 33 में सात्विक धृति और 34 में राजस धृति और 35 में तामसी धृति। तो भगवान कह रहे हैं पृथक हुए हैं अलग अलग करके। तो भगवान बिल्कुल अलग अलग करके तीन प्रकार की बुद्धि और तीन प्रकार की धृति बतलाते हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन तीन पृथक विभागों में करने के बाद अब भगवान कर्ता की बुद्धि तथा उसके संकल्प यानी धैर्य के विषय में उसी प्रकार से बता रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो इसके पहले भगवान ने ज्ञान कर्म और कर्ता तीन तीन प्रकार के बतलाए थे। श्लोक संख्या 20 में भगवान ने सात्विक ज्ञान बतलाया था। श्लोक संख्या 21 में राजस ज्ञान, श्लोक संख्या 22 में तामसी ज्ञान, श्लोक संख्या 23 में सात्विक कर्म, श्लोक संख्या 24 में राजसिक कर्म, श्लोक संख्या 25 में तामसी कर्म, फिर कर्ता 26वें श्लोक में सात्विक कर्ता, फिर 27वें श्लोक में राजसी करता है, 28वें श्लोक में तामसी करता है। तो लगातार 9 श्लोकों से जो है 9 श्लोकों में भगवान ने तीन प्रकार का ज्ञान बतलाया, तीन प्रकार का कर्म बतलाया और तीन प्रकार के कर्ता बतलाए। और अब भगवान अगले 6 श्लोकों में तीन प्रकार की बुद्धि और तीन प्रकार की धृति बतलाएंगे। तो संक्षेप में हम समझ लें कि तीन प्रकार की बुद्धि भगवान बताते हैं। श्लोक संख्या 30 में भगवान कहते हैं सात्विक बुद्धि कैसी होती है, जो अंतर जानती है, किसमें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, प्रवृत्ति में कैसे कार्य करना है, निवृत्ति से कैसे दूर होना है, क्या असल में भय है और क्या कहाँ भय है कहाँ भय नहीं है, है ना, कहाँ बंधन है कहाँ मोक्ष है, है ना। तो इस प्रकार से सात्विक बुद्धि जो है जानती है। फिर रजोगुणी बुद्धि भगवान बताते हैं जिसमें ठीक से समझ में नहीं आता है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना, कहाँ पर बंधन है कहाँ पर मुक्ति है नहीं जानती, तो वो रजोगुणी बुद्धि है, ठीक से नहीं पता है, कुछ पता होता है कुछ पता नहीं होता है, कई प्रकार के संदेह होते हैं। और तमोगुणी बुद्धि में क्या है, बिल्कुल उल्टी है, अधर्मम धर्मति, अधर्म को ही धर्म समझते हैं, धर्म को धर्म अधर्म को धर्म मानते हैं, है ना, जहां भय है वहां पर भय नहीं मानती और जहां भय नहीं है वहां पर भय मानती, तमोगुणी बुद्धि हर चीज को उल्टा करके मानती है। तो हाँ, फिर इसके बाद सात्विक धृति, सात्विक धृति भगवान बताते हैं कि मन प्राण और इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में जिस धारणा के द्वारा रखा जाता है, मतलब कृष्ण भावनामृत में तत्पर होकर के कोई व्यक्ति अपने मन और प्राण और इंद्रियों की क्रिया को भस्म करता है तो सात्विकी धारणा है या संकल्प है। रजोगुणी धृति क्या है, यह धारणा जिसके द्वारा मनुष्य धर्म अर्थ और काम के फलों में लिप्त रहता है, धर्म अर्थ काम, धर्म का पालन करेंगे तो धन प्राप्त होगा और धन से फिर काम यानी इंद्रिय तृप्ति करेंगे, तो ये जो है ना रजोगुणी धारणा है। तमोगुणी धारणा कैसी है, भगवान कहते हैं जिसके द्वारा अपने स्वप्न को नहीं छोड़ता, भय को नहीं छोड़ता, शोक नहीं छोड़ता, विषाद नहीं छोड़ता, मोह को छोड़ता नहीं है, तो ये तमोगुणी बुद्धि तमोगुणी धृति है ना। तो ये तो हमने संक्षेप में चर्चा कर दी। अब चूंकि श्लोक में शब्द है श्रृणु, भगवान कहते हैं कि श्रवण करो, तो इसका बहुत महत्व है श्रवण का। तो श्रीमद् भागवत में तो अनेक स्थानों पर श्रवण का महात्म्य बताया गया है। श्रीमद् भागवत का जो पहला स्कंध है पहला अध्याय है इसमें नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि हैं वो जिज्ञासा करते हैं किससे, सूत गोस्वामी से। तो प्रथम स्कंध का प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 8 में वो क्या कहते हैं, चूंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य सिद्ध जानकर आप पर सभी प्रकार से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वो सब बताइए जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। तो सुनना चाहते हैं नैमिषारण्य के ऋषि मुनि, क्योंकि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम श्रवण करो, है ना। तो ये जो है ना हमें समझना चाहिए कि श्रवण का कितना महात्म्य है। वेद तुम सौम्य तत्सर्व तत्वतस्तन्ननुग्रह ब्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम् अप्युतय। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य है? कैसे है, गुरु को प्रसन्न करने में और उनके शुभ आशीष प्राप्त करने में। तो वे जो गुरु है स्निग्ध शिष्य को, स्निग्ध का मतलब है चिकना, जो शिष्य चिकना होता है, एक चिकना होता है और दूसरा खुरदरा होता है, इसको कहते हैं रफ, अंग्रेजी में उसको रफ बोलते हैं, यू आर वेरी रफ मतलब आप बहुत खुरदरे हो, है ना। तो स्निग्ध उसको संस्कृत बोलते हैं, स्निग्ध रफ का उल्टा है, स्निग्ध का मतलब है चिकना, है ना। तो जो शिष्य चिकना चुपड़ा होता है ना, तो उसको जो है गुरु गुह्यम मतलब गोपनीय बातें भी बता देते हैं, जैसे भगवान अर्जुन को जो ना गोपनीय बातें बता रहे हैं, है कि नहीं। अर्जुन कैसे हैं, चिकने हैं, चिकने का मतलब विनीत है विनम्र है कि नहीं। और जो खुरदरा होता रहा है चिकने का उल्टा रफ, है ना, तो वो क्या है, है ना, उल्टा सीधा बोलने लगता है, उल्टे सीधे प्रश्न करता है ना, और फिर दोष निकालने लगता है, अपने गुरु में, है कि नहीं, कमियां निकालने लगता है, चुनौती देने लगता है ना, और जो है विनम्रता की बजाय कठोरता से बात करने लगता है ना, तो वो जो है ना उल्टा होता है, तो उसको फिर गुरु अपने रहस्य की बातें नहीं बताते कभी, है ना। इसके बाद ये सूत गोस्वामी कह रहे हैं, अतएव दीर्घ आयु प्राप्त करके आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन सामान्य के परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। आप तो बहुत दीर्घ आयु वाले हो, है ना, इन जन सामान्य तो बहुत कम आयु के हैं, तो आप जो ना अपनी दीर्घ आयु में आपने जो निश्चित किया है कम आयु वालों के कल्याण के विषय में, तो आप बताइए। तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यन्ति निश्चितम् पुंसाम् एकां तथा श्रेयं तन्ना संस्थितुमर्हसि। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है, अतएव आचार्यगण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। तो यहाँ मुनियों ने सूत गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे सारे शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करें, क्योंकि इस युग के लोग सभी प्रकार से पतित हैं। और कैसे हैं लोग, बहुत कम आयु वाले हैं। कलयुग के इस समय में लोगों की आयु न्यून है, वे झगड़ालू हैं, आलसी हैं, पथभ्रष्ट हैं, अभागे हैं, और साथ साथ सदा विचलित रहते हैं, कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। प्रायेण अल्पायुषः सम्भ्यं कलावस्मिन् युगे जनम् मन्दासु मन्दमतयो मन्दभाग्यं ह्युपद्रुतम्। तातरम लिखा है, भगवत भक्त सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। जब नैमिषारण्य के मुनियों ने इस कलयुग के लोगों की अवस्था का विश्लेषण किया, तो वे जान पाए कि उनकी आयु कम होगी। अब थोड़ी सी आयु में बहुत से शास्त्र हैं और बहुत प्रकार के कर्म हैं जिनको कि सुनना पड़ेगा, तो फिर कैसे जो सार है वो निकल पाएगा। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उनमें सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न विभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाएं। सब शास्त्रों का सार, भगवत गीता भी सब शास्त्रों का सार है, सर्व शास्त्र में ही गीता, और भगवान अर्जुन को सब शास्त्रों का सार सुना रहे हैं, है ना। भोरेणि भोरि कल्पानि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्रय यत्सारम् समुद्रित्य मनीषयम् ब्रोहे भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। फिर कहते हैं, अच्छा माफ करना, मैंने सूत गोस्वामी कहा, सोनक ऋषि बोल रहे हैं, सूत गोस्वामी से सोनक आदि ऋषि बोल रहे हैं। तो हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो, आप जानते हैं कि किस प्रयोजन से वसुदेव के पुत्र रूप में भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। सूत जानासि भद्रं ते भगवान सत्वतम पति देवक्यं वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षयम्। तात्पर्य लिखा है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं, यद्यपि भगवान सबों पर संभव रखने वाले हैं, तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। फिर सोनक ऋषि क्या कहते हैं, हे सूत गोस्वामी, हम भगवान और उनके अवतारों के विषय में जानने के उत्सुक हैं, कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके कहने और सुनने दोनों से ही मनुष्यों का उत्सर्ग होता है, उत्कर्ष उन्नति होती है। तन्ना शस्त्रो समानानां अर्यस्यंगानुवर्णितम् अर्यस्यंगानुवर्णितम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। इसके तात्पर्य में रूपा लिखते हैं, सूत गोस्वामी श्रील व्यास देव की परंपरा के हैं और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्कपट जीव हैं, जो सत्य जानने के लिए ललायत हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, आविर्भाव और तिरुभाव, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन लोगों के द्वारा जानने योग्य हैं जो सभी शर्तों को पूरा करते हैं, ऐसे उपदेश अध्यात्म मार्ग में सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं सुनो किसी, इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान के पुण्य यशों को नहीं सुनना चाहेगा। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोके कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयाम यथा कलिमलापहम। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वान पंडित मुनि उनका गान करते हैं, अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न लीलाओं के विषय में बताएं क्योंकि हम सुनने के इच्छुक हैं। तस्य कर्माण्युदाराणी परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहिणम् श्रद्धधानानां लीलयाम् दधितः कलम्। तात्पर्य लिखा है कुछ अल्पज्ञों का मत है कि भगवान निष्क्रिय हैं किंतु वे ऐसे कभी नहीं रहते, उनके कर्म उदार और भव्य हैं। आगे ऋषि मुनि क्या कहते हैं, हे बुद्धिमान सूत कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंग शक्ति द्वारा संपन्न होती हैं। अथाख्या हे हरे रधीमन अवतार कथा शोभा लीला विदता स्वयरम ईश्वर से तात्पर्य लिखा है भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन और संहार के लिए भगवान स्वयं हजारों रूपों में अवतार धारण करते हैं और इन विविध दिव्य रूपों में वे जो जो साहसिक कार्य करते हैं वे सभी कल्याणप्रद होते हैं। जो लोग ऐसे कार्यों के समय उपस्थित रहते हैं तथा जो ऐसे कार्यों की दिव्य कथाओं को सुनते हैं वे दोनों समान रूप से लाभान्वित होते हैं। और आप क्या कहते हैं सौनकृषि, हम यशोगान किए जाने वाले भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते अघाधे नहीं है, कभी हम तृप्त नहीं होते हैं सुनते हुए। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छन्वताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं यदि कोई चाहे तो भगवद गीता या श्रीमद भागवत का आजीवन बारंबार पाठ करता रहे तो भी उसे उसमें उनमें नवीनता ही दिखेगी। फिर अध्याय दो में सूद गोस्वामी कह रहे हैं अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण न उत्पन्न कर सकें तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। धर्म अपने स्वधर्म का कोई पालन करता है जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ना, तो अपने अपने वर्ण के अनुसार कोई धर्म का पालन करता है लेकिन भगवान के प्रति भगवान की कथा के प्रति अगर आकर्षण नहीं उत्पन्न हुआ तो वो सब क्या है व्यर्थ का श्रम है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है धर्म सुनुष्ठिता पुंसाम विश्व कथा सुयाम श्रम एव ही केवलम। तो इस श्लोक में शुद्ध गोस्वामी क्या कह रहे हैं श्रम एव ही केवलम, तो केवल श्रम ही किया क्या, धर्म का अच्छी प्रकार से अनुष्ठान किया लेकिन वो केवल श्रम ही किया। क्यों श्रम किया, क्योंकि भगवान की कथा में अगर रुचि नहीं उत्पन्न हुई तो खाली परिश्रम ही है, कोई लाभ नहीं ऐसे परिश्रम का। अब भगवान ने अर्जुन को चूंकि धनंजय कहा है, धनंजय का मतलब क्या है, हाँ जिसने धन को जीता है, तो एक ऐसी घटना है जिसमें अर्जुन ने धन जीत करके युधिष्ठिर महाराज को दिया था। जिस समय युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करना चाहते थे तो एक घटना उस समय की है जब पांच पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह हुआ और उस समय फिर पता चला धृतराष्ट्र के पुत्रों को कि पांडव लोग जिंदा हैं, तो कपट पूर्वक तो इनको उन्होंने मार डाला था, लाक्षा भवन में जला डाला था है ना, और ऊपर से बड़े दुख प्रकट कर रहे थे, अंदर से बहुत प्रसन्न थे कि चलो हमारा कांटा निकल गया है कि नहीं। ये बहुत सालों के बाद पता चला कि ये जिंदा है, तो अब ऊपर से तो बड़े प्रसन्न हुए कि अरे आप जिंदा हो, बहुत खुशी की बात है। अंदर से बहुत दुख हो रहा है कि अरे ये तो जिंदा है, हमने इनको मार डाला था, है ठीक उल्टा। तो इसके बाद फिर भीष्म है, द्रोण है, विदुर है, सबने सभा बुलाई और फिर ये निर्णय किया कि ठीक है इनको भी राज्य मिले, उनको भी राज्य दिया जाए, है ना। तो इनको फिर राज्य मिला कहाँ का, इंद्रप्रस्थ, खांडवप्रस्थ, तो एक जंगल ही था वो, है ना। तो वहां पर राज्य मिला। अब इंद्रप्रस्थ को जो है ना फिर भगवान कृष्ण की कृपा से फिर बढ़िया बस गया, जंगल में मंगल हो गया, मैदानों ने एक विचित्र सभा बना दी, तो और ज्यादा जो ना वो स्थान पवित्र हो गया और बहुत प्रसिद्ध हो गया और अच्छी मतलब प्रजा भी बस गई उस स्थान में। फिर युधिष्ठिर महाराज जब राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं तो इसके लिए तो बहुत धन की आवश्यकता है, धन, असीमित धन की आवश्यकता है राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं युधिष्ठिर महाराज। तो एक दिन अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं दिग्विजय के लिए जाऊं और पृथ्वी के सभी राजाओं से आपके लिए कर वसूल करूंगा, सब राजाओं से कर वसूल करूंगा। तो यह है तरीका धन प्राप्त करने का, राजाओं से कर लेंगे, टैक्स लेंगे, उनको हरा करके लाओ टैक्स निकालो। छत्री का और कुछ काम थोड़ी होता है कि वो व्यापार करे या किसी की नौकरी करे, है ना, वो तो छीनता है ना, युद्ध करके और धन जो है छीनता है और राजाओं से धन छीनता है। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके लिए कर लेके आता हूँ राजाओं से, राजाओं से लेंगे कर तो कोई थोड़ा थोड़ी मिलेगा, बहुत धन मिलेगा। युधिष्ठिर ने अर्जुन को उत्साहित करते हुए कहा अवश्य तुम्हारी विजय निश्चित है। युधिष्ठिर की आज्ञा प्राप्त करके चारों भाइयों ने दिग्विजय की यात्रा की। चार दिशाएं हैं और चार भाई हैं, युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं तो बाकी चार भाई हैं और चार दिशाएं हैं, तो चारों दिशाओं में चार भाई जाएंगे। यद्यपि चारों भाइयों ने एक साथ ही चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त की थी, फिर भी अक्रम से वर्णन मैं सुनाऊंगा। तो अर्जुन का जो है जो विवरण है ये मैं पढ़ के सुना रहा हूं। अर्जुन ने उत्तर दिशा की विजय का भार लिया, उन्होंने पहले साधारण पराक्रम से ही किनको जीता, अनर्थ देश को जीता, कालकूट कुलिंद देशों पर विजय प्राप्त की और फिर सेना सहित सुमंडल को जीत लिया। ये सब उत्तर दिशा के हैं राज्य, सुमंडल को साथी बना करके जो राजा सुमंडल था उसको जीत करके अपना साथी भी बना लिया, अपना मित्र बना लिया और फिर साकल द्वीप और प्रतिजिंद पर्वत के राजाओं पर विजय प्राप्त की। सात द्वीप के राजाओं में से साकल द्वीप वालों ने बड़ा घमासान युद्ध किया परंतु अर्जुन के बाणों के सामने उन्हें हारना ही पड़ा। उनकी सहायता से अर्जुन ने प्राग ज्योतिषपुर पर चढ़ाई की, वहां के प्रतापी राजा का नाम भगदत्त था। भगदत्त के सहायक कौन थे, किरात, चीन आदि बहुत से समुद्री देशों के लोग थे। किसके सहायक, भगदत्त के, इसमें चीन का नाम है, चीन के लोग थे। आठ दिन तक भयंकर युद्ध होने के बाद भी अर्जुन का उत्साह देखकर अर्जुन का उत्साह कम नहीं हुआ, आठ दिन तक लगातार दिन रात युद्ध किया, ये अर्जुन का युद्ध में उत्साह कम नहीं हुआ है। तो देख करके भगदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा महाबाहु अर्जुन तुम्हारा पराक्रम तुम्हारे ही योग्य है, तुम देवराज इंद्र के पुत्र हो ना, इंद्र से मेरी मित्रता है और मैं उनसे कम वीर नहीं हूं, इसलिए मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, क्यों तुम मेरे पुत्र के समान हो। बेटा मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, बताओ क्या चाहते हो। अर्जुन ने कहा राजन कुरुवंश शिरोमणि सत्य प्रतिज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, मेरी हृदय का अभिलाषा है कि वे चक्रवर्ती सम्राट हों, आप उन्हें कर दीजिए। तो मित्रता से जो है ना कर लेते हैं, उनको चक्रवर्ती सम्राट भी घोषित कर दिया और मित्र हैं तो राजा, मित्र राजा जो है अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, मित्र हैं अगर तो अपने मित्र की अधीनता स्वीकार कर ली। तो भगदत्त ने अर्जुन के कारण युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो अर्जुन कहते हैं आप मेरे पिता इंद्र के मित्र हैं और मेरे हितैषी हैं, इसलिए मैं आपको आज्ञा तो नहीं दे सकता, आप प्रेम भाव से उन्हें भेंट दीजिए, आज्ञा में नहीं दे सकता आपको। भगदत्त ने कहा, अर्जुन धर्मराज युधिष्ठिर भी तुम्हारे ही समान मेरे प्रेम के पात्र हैं, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, और कोई बात हो तो कहो। वीर अर्जुन ने उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करके आप आगे की यात्रा प्रारंभ की। तो बहुत धन लिया राजा भगदत्त से और आगे बढ़े। अर्जुन ने कुबेर के द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा में बढ़कर पर्वतों के भीतर और बाहर और आसपास के सब स्थानों पर अधिकार कर लिया। उलूक देश के राजा बृहंत ने घोर युद्ध करके हार मानी और वह अर्जुन की शरण में आ गया। अपनी जान बतानी थी तो अर्जुन की शरण में आ गया वो। अर्जुन ने बृहंत का राज उसी को सौंपकर उसकी सहायता से सेना बिंदु के देश पर धावा बोलकर उसे राज्य च्युत कर दिया। क्रमशः मोदापुर, वामदेव, सुदामा, सुसंकुल और उत्तर उलूक देशों के राजाओं को भस्म करके पंचगणों को अपने भस्म की